हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे बुधवार के कार्यक्रम में। थोड़ा नेक एक्सरसाइज भी हो रहा है आजकल, ऊपर तक देखना पड़ रहा है। बहुत ही प्रेरणादायक है कि कलयुग के इस गर्मी के मौसम में इतने तादाद में आप लोग सब भगवान की वाणी भगवद गीता को सुनने के लिए इतने इच्छुक हैं, और वो भी ये दूसरा अध्याय जिसमें भगवान सांख्य योग, जो कि बाकी योगों में से एक जटिल और कठिन समझने लायक योग बताया गया है, इतना आसान नहीं है, इसके मर्म को, इसके तत्व को पूर्ण रूपेण जान पाना। अब हम पिछले कई बुधवारों से भगवान जो सांख्य योग अब तक प्रारंभ नहीं किए सुनाना, परंतु इस पूरे अध्याय को एक शीर्षक दिया गया है, सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ क्या होता है? संख्या। जैसे हम संख्या किसी की गणना करते हैं और फिर संख्या के द्वारा या गणित के द्वारा हम किसी समस्या को सुलझाते हैं, तो उसी प्रकार से इस अध्याय में भगवान संख्या द्वारा, गणना द्वारा समझा रहे हैं अर्जुन को और हम सबको कि अर्जुन तुम अपनी बुद्धि लगाओ और गणना करो कि कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है और कौन सी वस्तु महत्वहीन है, और बुद्धि के द्वारा और गणना के द्वारा इस निष्कर्ष पर तत्ववादी आते हैं कि ये शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। तो आज का जो श्लोक, ये भी उस हरे कृष्ण उस सांख्य योग का प्रारंभ है आज का श्लोक। और इसलिए भगवान हालांकि अब तक नींव डाले हैं सांख्य योग को समझाने की अब तक के श्लोकों तक, और आज के श्लोक से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं विशेष रूप से सांख्य योग क्या है। नासतो विद्यते भावो,
नासतो विद्यते भावो,
ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोर्तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एक है सत और एक है असत, तो जो तत्वदर्शी हैं वो देखते हैं कि सत जो है वो नित्य है और असत जो है वो अनित्य। आप लोगों को लग रहा होगा अभी तक क्या बोल रहे थे, वही तो बोल रहे थे। ये जो सत्यता है सांख्य योग की, यह भगवान कई श्लोकों में, मेरे ख्याल से कुछ आगे के और 15-20 श्लोकों तक भगवान इसी बात को ठोक पीट कर समझाना चाहते हैं कि क्या नित्य है, क्या सत है और क्या असत, क्या अनित्य है। अब यहां पर भगवान मानो एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जो ये विलाप कर रहे हो और ये जो तुम शोकाग्नि में डूबे हुए हो, वियोग कर रहे हो तुम इनके मरने का, ये तत्वदर्शी का दर्शन नहीं है। क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी का अर्थ क्या है? जो तत्व का दर्शन ठीक से कर पाते हैं, जो तत्व का दर्शन ठीक से कर पाते हैं वो तुम्हारी तरह विलाप नहीं करते अर्जुन। तो तुम तत्वदर्शी बनो, युद्ध वगैरह सब छोड़ दो। तुम अब यहां पर अब युद्ध की कोई बात नहीं चल रही कि किसे मारोगे किसे नहीं मारोगे, वो सब उसे साइड में रखो। अब सबसे पहले ये समझो कि तुम तत्वदर्शी बनना चाहते हो या नहीं, और तत्वदर्शी बनने की परिभाषा क्या है, योग्यताएं क्या है और लक्षण क्या है। तो जो सत से प्रभावित नहीं होता, जो असत से प्रभावित नहीं होता और जो सत में स्थित रहता है वो है तत्वदर्शी। उभयोस् अपि दृष्टोन्तस्, दोनों में, दोनों को जानता है। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज को ही जानता है। तत्वदर्शी वो है जो सत और असत दोनों को जानता है। इसलिए पूरे भगवद गीता में भगवान भौतिक प्रकृति के बारे में और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में, शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में, दोनों के बारे में समान रूप से ज्ञान देते हैं। क्योंकि यदि हमें आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले भौतिक संसार से छूटना है। हरे कृष्ण। और भौतिक संसार से यदि हमें छूटना है तो भौतिक संसार को ठीक से जानना होगा, तब जाकर यहां से हम बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए आज का श्लोक भगवान तत्व दर्शन दे रहे हैं और इसलिए आज के श्लोक से सांख्य योग प्रारंभ हुआ है। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पिछले श्लोकों से क्या संबंध है आज के श्लोक का, सत एवं असत की व्याख्या और तत्वदर्शी इसकी परिभाषा। तो मुख्य रूप से भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन तत्वदर्शी बनो, और फिर श्लोक में समझाया कि तत्वदर्शी कौन है, कैसे बना जा सकता है। अब 12वें श्लोक से लेके अब तक का श्लोक हमने नत्वे वाहम जातुनासम देहिनोस्मिन यथा देहे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय यम हि न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ, और आज का श्लोक। तो आप लोगों को लग रहा हो अचानक समर वेकेशन का कोई हिमालय शिमला वगैरह जाने का कोई एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर देखिए भगवान एक एक श्लोक के द्वारा हमें सांख्य योग के निकट ले जा रहे हैं, सांख्य योग को बहुत निकट से दिखा रहे हैं भगवान। 12वें श्लोक में भगवान ने केवल इतना कहा कि हम नित्य रूप से हर जगह पर मौजूद थे हैं होंगे, भूत वर्तमान भविष्य को लेकर भगवान ने नित्यता स्थापित की, बस उतना ही कहा। फिर भगवान और निकट लेकर गए शरीर, देहिनोस्मिन यथा देहे, कि शरीर में कैसे ये शरीर परिवर्तन परिवर्तित होता रहता है परंतु आत्मा वो नित्य रहता है। और फिर आगे के दो श्लोकों में भी भगवान ने सुख दुख में कैसे समान रहना है वो। तो ये उसी प्रकार है जैसे हम दूर से किसी पहाड़ को पर्वत को देखते हैं। तो अब यदि आपको पूछा जाए कि ये क्या है, क्या कहोगे आप? क्या है ये? पर्वत है ना, पक्का पर्वत है। अब यदि आपको पर्वत के ऊपर ले जाया जाए और पर्वत के एक पेड़ को दिखाया जाए, तो पेड़ को देखकर आपको यदि पेड़ को दिखाकर आपको पूछा जाए कि अब ये क्या है, तो क्या कहोगे? पेड़, पेड़ है ना। अब उस पेड़ के ऊपर आपको चढ़ा दिया जाए और पेड़ के ऊपर चढ़ाकर आपको पेड़ की एक टहनी दिखाई जाए, एक पत्ता दिखाया जाए, तो आप क्या कहोगे? ये टहनी है, ये पत्ता है, ये फूल है, ये फल है। और फिर पर्वत में बहुत से झरने हो सकते हैं, झरने यदि आपको दिखाया जाए तो आप क्या कहोगे? झरने हैं। अब उस पर्वत से एक पत्थर उठाकर आपको दिखाया जाए, ये क्या है, तो क्या कहोगे? पर्वत कहोगे, पत्थर कहोगे? पत्थर। तो अब पर्वत में, पेड़ में, झरनों में, टहनियों में, फूलों में, पत्तों में कोई अंतर है? क्या आपका कहना कि ये पर्वत है और ये कहना कि नहीं ये पेड़ है, ये इसमें कुछ विरोधाभास है? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सांख्य योग चल रहा है तो फिर थोड़ा टेक्निकल है। अब दोनों में विरोधाभास है या समानता है, या सही है या गलत है, ये बोलो। हाँ, अच्छा, दूर से देखा जाए तो पर्वत है परंतु यदि इंडिविजुअली देखा जाए तो पर्वत नहीं है, और कुछ है? हाँ, वो सही बात है। यदि उसे व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, अर्थात व्यक्तिगत रूप से कहना ठीक नहीं रहेगा, निकट से देखा जाए। निकट से देखोगे तो आपको उसी पर्वत में कितनी अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं दिखेंगी, है कि नहीं? तो भगवान उसी सांख्य योग को 12वें श्लोक में दूर से दिखाए। देखो, क्या ये क्या है? सांख्य योग, जैसे पर्वत। फिर धीरे धीरे अर्जुन को उस पर्वत के निकट ले जा रहे हैं कि सांख्य योग में देह और आत्मा, इसका भेद किस प्रकार से शुरुआत में समझ में आता है। फिर देह और आत्मा के संबंध में कौन कौन से द्वंद्व हैं, सुख दुख, शीत उष्ण, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, उस श्लोक से द्वंद्व समझाएं। और यहां पर अब इस श्लोक में भगवान सांख्य योग के, अर्थात उस पर्वत के और भी निकट अर्जुन को ले जाकर, यदि सांख्य योग की तुलना एक पर्वत से की जाए तो भगवान अब अर्जुन को इस सांख्य योग रूपी पर्वत के एकदम निकट या पर्वत पर चढ़ा दिया है और बता रहे हैं कि देखो इस पर्वत में और क्या क्या वस्तु तुम ध्यान से देख सकोगे, समझ सकोगे तत्व इस पर्वत का। तो इसलिए अब आपको समझ में आए कि ये इतने सारे श्लोकों को क्यों भगवान इतना विस्तार से बोल रहे हैं, इसका संबंध क्या है। तो इसलिए आज का जो श्लोक है इसमें विशेष रूप से तत्वदर्शी इसकी परिभाषा दी गई है कि तत्वदर्शी कैसे बने। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम अक्सर तत्व को छोड़कर जो बाह्य रूप है उस तत्व का केवल उसी से प्रभावित रह जाते हैं। या अंग्रेजी में ये कहें कि वी आर सो फैसिनेटेड बाय द पैकेजिंग दैट वी हार्डली ओपन द पैकेज टू फाइंड आउट द रियल प्रोडक्ट इनसाइड। पैकेजिंग के जमाने में जो असली तत्व है जिसके लिए वो पैकेजिंग किया गया है वो हम ध्यान से नहीं उसको समझ पाते। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के भी वास्तविक तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम सांख्य योग को नहीं समझेंगे इन श्लोकों के द्वारा। तो अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ना सतह भावो और असत भावो, कि सत एवं असत ये क्या है। असतो मा सद गमयो मृत्योर्मा अमृतम गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। सत और असत एक दूसरे से विपरीत हैं। सत का अर्थ है नित्यता, असत का अर्थ है अनित्यता। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सत है वो परिवर्तनहीन है और असत जो है वो परिवर्तनशील है। अब ध्यान से इन दोनों शब्दों को आप देखिए, कोई भी चीज परिवर्तनहीन होना अर्थात उसमें कुछ कम है ना, और परिवर्तनशील होना ये उसमें कुछ गुण है कि नहीं। परिवर्तनहीन होना नेगेटिव हो गया ना, किसी वस्तु से हीन होना, और परिवर्तनशील होना पॉजिटिव हो गया। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब यह है कि जो सत है उसमें कुछ चीज नहीं है और असत में कुछ चीज है। तो साधारण दृष्टिकोण से जो तत्वदर्शी नहीं होगा उसे क्या लगेगा कि भाई ये चीज अच्छी है ना जिसमें है कुछ। देर इज समथिंग इन असत एंड देर इज समथिंग मिसिंग इन सत। परंतु उसके नीचे ये जो दो शब्द है नित्यता और अनित्यता, अब फिर से गड़बड़ हो गया कि यदि परिवर्तनहीन वो एक नेगेटिव कनोटेशन दे रहा है तो उसके साथ नित्यता उसका एक गुण है जो कि पॉजिटिव है, और परिवर्तनशील एक पॉजिटिव कनोटेशन दे रहा है परंतु उसके नीचे उसका गुण बताया गया है अनित्यता जो कि एक नेगेटिव उसका कनोटेशन है। हरे कृष्णा। तो अब किसे पकड़े, सत को पकड़े असत को छोड़े या असत को पकड़े सत को छोड़े, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? सत अच्छा है, सतनाम वाहिगुरु सत अच्छा है। क्योंकि हम देखिए इस भौतिक संसार में हम सब तत्वदर्शी हैं, ऐसा नहीं कि कोई तत्वदर्शी नहीं है। यहां पे तत्वदर्शी की व्याख्या की गई है वो जो सत्य को परिवर्तनहीन रूप में समझे और असत को परिवर्तनशील रूप में जाने। तो हम सब इस भौतिक संसार में हम सब नित्यता चाहते हैं, है कि नहीं? वी ऑल वॉन्ट एटर्नैलिटी, नित्यता, और हम सब भयभीत रहते हैं इम्परमनेंस, अनित्यता से, है कि नहीं? कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे यहां पर भगवत गीता के बाहर का उदाहरण, कुछ भी आपके जीवन में जिसमें आपने ये अनुभव किया कि मैं नित्यता से आकर्षित हुआ और अनित्यता से घबराया. सम एग्जाम्पल्स, पीपल वॉन्ट परमानेंट जॉब, सत्काम, है ना, कि जॉब जो होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए. पता नहीं आजकल तो लोग थोड़े विपरीत बुद्धि के हो गए कि जितना जितना जॉब चेंज करो आजकल उसको प्रगति मानते हैं. मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया. हमारे जेवरकर प्रभु 41 इयर्स से माइको इंडस्ट्रीज में काम किया. 42 एक साल मैंने ही कम कर दिया. 42 इयर्स, मतलब इसमें देखा जाता है कितना नित्यता के ऊपर कितना जोर है. तो हाँ, एक उदाहरण है कि जैसे हम इस भौतिक संसार में कोई भी काम ढूंढते हैं तो मन में यही रहता है कि वो परमानेंट जॉब हो. और कुछ ओ, यहां पे थोड़ा अभी जोरकर प्रभु पहाड़ के ऊपर ले जा रहे हैं हमको. थोड़ा और मैग्निफाइंग, माइक्रोस्कोपिक विजन, कि उस जॉब के अंदर भी वो कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट चेंज होने से घबराहट होती है कि अगर प्रोडक्शन से किसमें डाल दिया जाए, सेल्स में, किधर भी और डाल दिया जाए तो फिर घबराहट होती है कि नहीं, मुझे एक ही डिपार्टमेंट में वहां पे रहना है, है ना. तो परमानेंट जॉब, परमानेंट हाउस, उसके पीछे भी हम हर समय इसी विचार में रहते हैं कि घर भी जो हो वो परमानेंट हो. इम्परमानेंट घर से घबराहट होती है. परमानेंट प्लेस, वही घर. तो रहने की जगह, निवास स्थान हमारा नित्य होना चाहिए. हमारा जो काम है वो नित्य होना चाहिए. व्यापार नित्य होना चाहिए. परिवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लाइफ पार्टनर शुड बी परमानेंट और चेंजिंग. और कुछ, शरीर है कि नहीं? हम ये शरीर में जीना चाहते कि नहीं जीना चाहते? अक्सर जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ऐसी अवस्था में रहता है जब पीक ऑफ इट्स ब्यूटी, वो शरीर, व्हेन इट्स द बॉडी इज द पीक ऑफ इट्स ब्यूटी, तब ये इच्छा होती है कि ऐसे ही नित्य रूप से मेरा रूप ऐसा ही बना रहे. क्योंकि जब हमारा पास्ट का फोटो देखते हैं या फ्यूचर का फोटो कोई दिखा दे तो फिर घबराहट होती है कि मैं क्या था, क्या हो जाऊंगा. तो बस यही अवस्था मेरी नित्य रूप से रहे. तो शरीर, स्वस्थ शरीर हम नित्य रूप से चाहते हैं. अच्छा, अब ये मैं पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें हम बदलाव चाहते हैं, मतलब परिवर्तनशील, उससे हम वो चाहते हैं और नित्यता से घबराते हैं. कोई ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो नित्य रूप जिसका हो तो हमको घबराहट होती है और अनित्यता से हम आकर्षित रहते हैं. प्रॉब्लम्स, तो नित्य प्रॉब्लम्स से घबराते हैं और अनित्य प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे लगते हैं. कैसे? लाइक व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय अनित्य प्रॉब्लम्स, इम्परमानेंट प्रॉब्लम्स? जैसे कि आज प्रसाद में मेरे लायक सब्जी नहीं बनी तो पता है, लेकिन अगले वेडनेसडे को, पिछले वेडनेसडे को मेरे लायक सब्जी बनी थी, अगले वेडनेसडे को भी बन सकती है मेरे लायक, इस वेडनेसडे को मेरे लायक स्वीट नहीं बना, सो वी टॉलरेट दैट टू बिगिन विथ अ सिंपल एग्जाम्पल. और कोई एग्जाम्पल्स जिसमें ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम तो वीकेंड्स पे बाहर जाना अच्छा लगता है, चेंज, तो उसमें परिवर्तनशील, कि वीकेंड्स में कहीं तो जाओ, घर में नहीं रहो, चाहे रोड पे खड़े हो जाओ, बाहर जाओ कहीं तो बाहर निकलो, चार दीवारी से कहीं बाहर जाओ, बालकनी में खड़े हो, छत पे चले जाओ, बेसमेंट में चले जाओ, किधर तो जाओ. सो चेंज, फॉर अ चेंज. ओ इंग्लिश में एक सेइंग है ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, कि जिसमें वैरायटी आती रही तो उसके अंदर, जैसे ये टीवी के प्रोग्राम, वो हालांकि एक ही चीज बहुत बताते रहते हैं, लेकिन उसमें हमको लगता है कि ये सब वैरायटी आ रहा है, हमको लगता है कि इसमें वैरायटी बहुत है. जैसे हमारे एक अमेरिका के भक्त बता रहे थे कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके, वो इंडियन है तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके अमेरिका में, वहां पर भी बॉलीवुड की पिक्चरें चलती है थिएटर्स में, तो अपने एक अमेरिकन फ्रेंड को लेकर गए कोई अपने बॉलीवुड की पिक्चर दिखाने. तो फिर वो इंटरवल का समय होता है ना, जब थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं सब लोग, आपको पता है वो खाते क्यों है इतना पिक्चर देखते समय? क्योंकि पर्दे के ऊपर तो सब काल्पनिक है ना, तो कुछ तो सत होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग रियल, क्योंकि ऊपर तो सब असत चल रहा है, सो देयर शुड बी समथिंग रियल, तो देयरफॉर दे ईट समथिंग रियल. तो इंटरवल के बाद फिर ये लोग बाहर आए, तो फिर ये जो अमेरिकन जो इनका फ्रेंड था, इसने कहा कि सो वी शुड लीव नाउ, बट द रेस्ट ऑफ द मूवी इज स्टिल देयर, एवरीथिंग, एवरी टाइम द मूवी इज द सेम, आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सब वही चीज है और वही चीज बार बार आपके इसमें पिक्चरों में बताई जाती है, और मुझे पता है क्या होने वाला है, तो इससे अच्छा हम और कुछ करते हैं. तो इससे यह समझ में आ रहा है कि इस भौतिक संसार में लोग वो परिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, इस भौतिक संसार को परिवर्तनशील बनाना चाहते हैं, परंतु हमने वो जो श्लोक लिया मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, उसमें हमने क्या समझा कि ये परिवर्तनशील जो संसार है ये नित्य रूप से परिवर्तनशील है, उसको नहीं बदल सकते. नित्य क्या है इस भौतिक संसार का? नित्य स्वरूप दुखालय. वो जो दुखालय नित्य स्वरूप है उसको हम नहीं बदल सकते. तो चाहे हम ऊपर से कितनी भी बाहरी रूप से इसको इसको बदले, परिवर्तनशील करें, परंतु नित्य जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको हम नहीं बदल पाएंगे. तो इसलिए यहां पर हमें यदि तत्वदर्शी बनना है तो हमें नित्यता को पकड़ना है, और नित्यता को हम सब पकड़े हैं, उस दृष्टिकोण से तत्वदर्शी हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में मेरा काम, मेरा परिवार, मेरा घर, नौकरी, जो कुछ धंधा, मेरा शरीर, सब कुछ नित्य हो. तो श्रील प्रभुपाद वो इसकी व्याख्या करते हुए अपने प्रवचनों में कहे हैं, दिस प्रूव्स दैट द सोल इज ऑलवेज यू नो हैविंग इट्स कमांड ओवर द बॉडी बिकॉज दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल टू बी एटर्नल सत. Therefore, the body wants to be eternal, the mind wants to be eternal. So, this is the quality of the soul, Prabhupada kehte hain. Ek baar Prabhupada, ye 1966, jab Prabhupada America mein pahunche hi the, 65, ek saal paschat, 66 mein Prabhupada, 26 Second Avenue, New York, Manhattan, wahan par, Srila Prabhupada pravachan de rahe hain. Aur isi, बात मुद्दे के ऊपर सांख्य योग के ऊपर प्रभुपाद प्रवचन देते हुए उदाहरण प्रभुपाद देना चाहते थे कि सत और असत को कैसे समझा जाए. तो प्रभुपाद ने देखा कि गाड़ियां जा रही थी बाहर रास्ते पर गाड़ियां जा रही थी. तो प्रभुपाद ने सबको एक गाड़ी दिखाई कि अब इस गाड़ी को देखो. तो सभी बाहर देखे वो गाड़ी उनके सामने से गुजरी. तो प्रभुपाद ने पूछा अब ये गाड़ी आपके आंखों के सामने से गुजरी तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये गाड़ी अब खत्म हो गई आपके सामने से ओझल हो गई तो क्या ये गाड़ी खत्म हो गई. सभी कहे नहीं नहीं आगे गई लेकिन आपको तो नहीं दिख रहा ना आपको तो नहीं दिख रहा. तो आपके आंखों को यदि पूछा जाए कि गाड़ी खत्म हो गई तो आंखें क्या कहेंगी. हां और एक और गाड़ी को दिखाया प्रभुपाद ने अब इस गाड़ी को देखो. तो सभी वापस देखे उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी को. अब प्रभुपाद ने कहा कि अभी आप इस गाड़ी को जो देख रहे हो क्या ये गाड़ी अभी पैदा हुई है. तो कहे कैसे तो पीछे से चलते हुए आई है ना. लेकिन आपके आंखों को यदि पूछा जाए तो आपकी आंखें तो अभी देख रही है ना. ये कहां से आई गाड़ी वो तो नहीं देखा आपकी आंखों ने. तो आंखों को पूछा जाए तो आंखें क्या कहेंगी कि हां अभी पैदा हुई है. और जाने के बाद आंखों को पूछा जाए तो आंखें क्या कहेंगे मर गई. तो न तो गाड़ी मरी है न तो गाड़ी पैदा हुई है. हमारे आंखों के सामने दिख रही है कि अभी वो गाड़ी आई पैदा हुई और फिर चली गई तो गाड़ी मर गई. बहुत ही सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद सरलता से समझ में आ रहा आपको समझाए कि सत और असत में अंतर क्या है. तत्वदर्शी कैसे बनना है कि जब हम गाड़ी को देख रहे हैं तो तत्वदर्शी कैसे देखेगा. एक छोटा बच्चा कैसे देखेगा वो गाड़ी अभी पैदा हुई अब चली गई मर गई. लेकिन एक तत्वदर्शी उस गाड़ी को कैसे देखेगा वो जानता है कि ये गाड़ी कहीं से आई है और आगे कहीं जा रही है. तो हमें उसी प्रकार से तत्वदर्शी बनना है कि ये जो मेरा आत्मा है ये न तो पैदा हुआ न आगे चलकर दूसरा कितने भी शरीर इसको मिले न ये मरने वाला है. ये क्या है बादल केवल बादल आकाश और बादल. अब ये क्या है हाँ ये भी आकाश और बादल है दोनों में कोई अंतर है. दोनों में कोई अंतर है रूप में फर्क है हाँ क्या एक स्टेबल है एक भाग रहा है क्या बादल हाँ ठीक है. तो बादल एक इसमें शायद लग रहा है कि भाग रहा है और इसमें खड़ा हुआ है. ये क्या है कुछ दिखाई दे रहा है? क्या है ये? सनसेट, सन दिख रहा है आपको? नहीं, ये आकाश है कि नहीं? आकाश है क्या? ये सभी आकाश है, अब समझ में आया ना? सभी आकाश है, परंतु फिर भी इसमें हम क्या देख रहे हैं? परिवर्तन। अभी ऊपर देखो रात के समय तो क्या देखोगे? आकाश। सुबह सूर्योदय के पश्चात ऊपर देखो क्या दिखेगा? आकाश। मध्य रात्रि में देखो या दोपहर में देखो, कभी भी आप देखो ऊपर, आकाश नित्य है। परंतु आकाश से संबंधित यहां पर आप देख रहे हो बादल, फिर तारे, कभी बादल हैं और बादलों के साथ तारे भी हैं, चांद भी है, कभी तारे नहीं दिखते, बादल भी नहीं दिखता, चांद भी नहीं दिखता, केवल घना काला आकाश। तो क्या समझ में आया इसे? या अचानक हम पर्वत से आकाश पे कैसे पहुंच गए? मेरे ख्याल से सरल है समझना कि जैसे आकाश की तुलना किससे की गई है? आत्मा से, सत से। आत्मा से सत से तुलना की गई है आकाश की। और जैसे यह हमारा शरीर परिवर्तनशील, असत जो परिवर्तनशील है, वो इस आकाश के ऊपर जैसे बादल हैं, तारे हैं, चांद हैं, जो कुछ है ये सब कुछ। तो यहां पर इस उदाहरण से ये समझ में आ रहा है कि बादल चाहे कितने भी घने हो या न हो, साफ आकाश हो, क्लियर स्काई हो या क्लाउडेड स्काई हो, क्या आकाश को फर्क पड़ता है? आकाश को उससे कोई फर्क पड़ता है? अब जैसे आकाश का रंग क्या है? ब्लू। श्रील प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस के गार्डन में प्रभुपाद बैठे हुए थे और आकाश की तरफ देखते हुए प्रभुपाद कहे, यू नो व्हाई द स्काई इज ब्लू इन कलर? बिकॉज is just one fraction, just one ray from the Brahma Jyoti which comes out from Krishna's body. Krishna's body is blue in color. So one ray of that fills the sky with that color. So ab aakash ka rang neela, sky blue bolte na. परंतु इस चित्र में देखो रात के समय अब आकाश का रंग क्या दिख रहा है? तो क्या आकाश काला हो गया? सनसेट के समय थोड़ा अलग कलर होता है, वो सनसेट का कलर ऑरेंज, सैफ्रॉन, उस प्रकार से। तो जिस प्रकार से आकाश का जो रंग है वो हमारी आंखों को बदला हुआ दिखता है, रंग नहीं बदल रहा। ऐसा नहीं कि फिर किसने जाके रात को पेंट किया ब्लैक, फिर ब्लू, फिर सनसेट के समय ऑरेंज, नहीं, हमारी आंखों को वो दिखता है। परंतु जो तत्वदर्शी हैं वो कैसे देखते हैं? नहीं, आकाश वो नीला है, हर समय नीला है। तो यदि भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि यदि अर्जुन तुम्हें तत्वदर्शी बनना है तो तुम ये जो इनका शरीर देख रहे हो ना, तुम भीष्म, द्रोण, ये सब कुछ आकाश के ऊपर जैसे बादल, तारे, चांद, कभी काला आकाश दिख रहा है, कभी नीला आकाश दिख रहा है, बस तुम इससे प्रभावित हो रहे, तुम बादलों से प्रभावित हो रहे और बादलों में कोई तत्व ही नहीं। कई बार आप देखो ऊपर ये बादल इतने घने दिखते हैं, इतने मोटे दिखते हैं कि ऐसा लगता है आप प्लेन से भी कभी जाओ तो ऐसे इतने बड़े बड़े बादल, इतने मोटे मोटे बादल दिखते हैं, लेकिन अंदर है कुछ नहीं। उसी प्रकार से कई बार हम शरीर से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ ये शरीर मेरा, ये इतना सुंदर मेरा शरीर, स्वस्थ मेरा शरीर, मेरा शरीर मुझे इतना आनंद दे रहा है, मुझे इतना भोग दे रहा है, इतनी इंद्रियां जो इस शरीर में है मुझे इतनी भोग दे रही है, तो वो बादल के समान है, दिखने में इतना बड़ा बड़ा दिखता है, एक हवा चले जैसे आप देख रहे उड़ 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 के चला जाता है या फिर छिंदी छिंदी हो जाता है। तो उसी प्रकार से शरीर है, परंतु आकाश जो है चाहे कितना भी तूफान आए, चाहे कितनी भी हवाएं चलें, चाहे कितना भी बादल कुछ बारिश हो, कुछ भी हो, आकाश नित्य रहता है, वो कभी टस से मस नहीं होता। तो आकाश की तुलना की गई है परिवर्तनहीन सत से, और बादलों की तुलना की गई है और तारों की तुलना की गई है परिवर्तनशील असत से। अब यहां पर भगवान ये कह रहे हैं ना भाव विद्यते सतह। तो भाव का अर्थ क्या है? भाव के दो अर्थ, ये संस्कृत का शब्द है, इसके दो अर्थ यहां पर बताए गए हैं। एक है भाव का अर्थ है रूप, और भाव का अर्थ है मूल्य। तो किसके संदर्भ में है ये? ये अब सत के संदर्भ में, कि सत का रूप है और सत का मूल्य है, दोनों है। ये क्या दिख रहा है? अब क्या है? हरे कृष्ण, हमारा माइक भी परिवर्तनशील है। Excuse the hand mic. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कोट का चित्र है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कोट के हाथ हैं, क्या इस कोट के हाथ हैं कि नहीं, क्या इस कोट का गला है? तो ये कोट के हाथ और कोट का गला, ये कोट को किसने दिया? आप कहोगे दर्जी ने। दर्जी ने दिया, कौन दिया? अर्थात ये पूछा जाए कि कोट को रूप किसने दिया? टेलर ने दिया। टेलर रूप कोट को दिया है किसके आधार पर? शरीर के आधार पर ना। उसने नाप किसका लिया? कुत्ते का थोड़ी लिया। नाप तो मनुष्य का लिया ना, मनुष्य के शरीर का नाप लिया कि इसका इतना लंबा हाथ होना चाहिए, इसका गला इतना होना चाहिए, जो भी कुछ। तो शरीर के आधार पर कोट को हाथ मिला है, कोट को जो भी गला मिला है, पैंट को जो भी पैर मिले हैं, शरीर के आधार पर। तो यही उदाहरण दिया गया है, उसी की तुलना में ये शरीर को जो हाथ मिला है और ये शरीर को जो कुछ आकार मिला है, रूप मिला है, वो अंदर जो सत आत्मा है उसके वजह से मिला है। इसलिए तत्वदर्शी क्या कहेगा? तत्वदर्शी ये नहीं कहेगा कि दर्जी ने हाथ दिया है। यहां पर बार बार भगवान उसी मुद्दे को समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी कैसा बनना है, कि तत्वदर्शी नहीं कहेगा कि यह आकार दर्जी ने दिया है। तत्वदर्शी कहेगा कि यह आकार उस शरीर के कारण इस कोट को मिला है, उसी प्रकार से ये शरीर को आकार मिला है। इतने हम आकार के पीछे पागल रहते हैं ना शरीर के। तो यहां पर तत्वदर्शी देखता है कि ये शरीर का आकार है उसके अंदर के आत्मा के कारण। तो अब रूप भाव का अर्थ यह हुआ कि आत्मा का भाव क्या है, आत्मा का रूप है, और उस रूप के कारण हम ये जो शरीर आदान प्रदान कर रहा है ये उसी आत्मा के कारण है। इसलिए इस श्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जब आत्मा इस रूप को छोड़ देता है तो रूप का क्या होता है। आप देखिए क्या होता है, सड़ने लगता है कि नहीं। ये रूप जो कि अब इतना अब हमको सुंदर दिखता है, इतना प्यार है इस रूप से और कितने अन्य रूपों से इस प्रकार के, तो वो वास्तविक रूप में हमारा प्रेम वो जो इस आकार को दिया है उससे होना चाहिए। ये तत्वदर्शी का दर्शन है, परंतु उसको हम भूल जाते हैं। और ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई कोट के पीछे पागल है, परंतु जो कोट को पहना है उसे वो देख ही नहीं पा रहा है। कि मान लो आप बहुत ही अच्छा कोई 3-piece सूट पहनकर किसी की शादी में जाते हो और वहां पर आपको जिसके भी शादी में गए हो तो वो आपको स्वागत करते हुए कहते हैं कि आइए आइए बैठिए, कोट यहां बैठिए। और कोट को खाना खिलाया जा रहा है, दाल चावल सब्जी कोट के ऊपर डाला जा रहा है और कोट का ही गुणगान चल रहा है। आपको क्या लगे, अरे मैं पहना हूं, मेरे को तो देखो। तो इसको आप ध्यान से इसका दर्शन कीजिए कि आपको कैसा लगेगा कि केवल आपके कोट का आदर सत्कार हो रहा है लेकिन आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो सोचिए 99% से भी ज्यादा लोग केवल ये कोट जो है ना शरीर इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और जो अंदर बैठा हुआ असली आदमी है जो कोट को पहना हुआ है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो जैसे ये रूप समझ में कब आता है कि ये रूप फालतू था, जब अंदर का जो सत है वो छोड़कर चला जाता है, तब फिर जल्दी से जल्दी इसको दफनाओ या इसका अंतिम क्रिया करो, जलाओ फेंको जो भी कुछ करो इस रूप को, ये आकार को तुरंत, तब समझ में आता है कि वास्तविक महत्व तत्व क्या था, वो आत्मा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि तत्वदर्शी कौन से भाव को देख रहा है, वो रूप को। अब मूल्य, इसके पश्चात मूल्य। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर का मूल्य क्या है, केवल केमिकल से बना है। बस हमारा शरीर केवल केमिकल से बना है। तो अब यदि केमिकल से बना है तो यहां पर ये बच्चा दिख रहा है जो भी केमिकल के अंदर, तो केमिकल निकाल के दे दो माता पिता को बच्चे के बदले, तो बच्चे के बदले केमिकल को दे दो या जो भी उसके बदले इसको दे दो, इसके बदले उसको दे दो, तो एक ही समान है नहीं। तो फिर मूल्य को समझने के लिए अब यदि हम इन उदाहरणों से समझें, अब यहां पर क्या क्या दिख रहा है, आंखें हाथ पैर चेहरा। तो अब ये हमारे शरीर के भाग हो गए, दीज आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और फिर पूरा शरीर भी लीजिए, दिस इज द कंप्लीट बॉडी ऑल्सो। तो अब इसका मूल्य हम यदि निर्धारित करें तो क्या हम निर्धारित कर सकते हैं कि आंखों का इतना मूल्य होना चाहिए, हाथों का इतना मूल्य होना चाहिए, पैरों का इतना मूल्य होना चाहिए, चेहरे का इतना मूल्य होना चाहिए, या पूरे शरीर का इतना मूल्य होना चाहिए? कौन निर्धारित करता है कि कौन से भाग का मूल्य कितना होना चाहिए? हाँ, कोई अगर किडनी ट्रांसप्लांट चल रहा है तो किडनी का कुछ मूल्य होता है, कोई डोनेट करता है ना तो किडनी का कोई मूल्य होता है, लिवर कोई डोनेट करता है उसका कुछ मूल्य हो सकता है। तो ठीक है, यदि इस तरीके से इसको समझा जाए कि मान लो किसी के किडनी का मूल्य है 50,000 और उसने अपनी एक किडनी निकालकर जो बीमार व्यक्ति है उसको दे दी, 50,000 में उसको वो किडनी दे दी, तो अब क्या ये बीमार व्यक्ति के शरीर में 50,000 के मूल्य की नई वस्तु ऐड हुई है कि नहीं? 50,000 की किडनी ऐड हुई ना, तो रेट बढ़ गया ना। रेट बढ़ गया कि नहीं? अच्छा, इसने जो किडनी अपनी एक निकाल के दे दी, क्या इसका रेट घट गया? हाँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ये दोनों को साइड में रखते हैं, एक अलग से किडनी निकालते हैं किसी की, क्या बोलते हैं उसको, गुर्दा? किडनी को गुर्दा तो लिवर हो गया ना, ठीक है किडनी आप लोग समझते हैं। तो किडनी किसी की निकाल के ऐसे रखा है और दोनों मर गए, तो अब उसका मूल्य कितना रखोगे आप? वो किडनी का क्या मूल्य है जब तक कि वो उस शरीर से कनेक्टेड नहीं है? ये आंखें कैसे लग रही है आपको, केवल आंखें, या कांग्रेस के दो हाथ कैसे लग रहे हैं? तो अलग अलग कर दें, यदि आंखों को अलग कर दें, हाथों को अलग कर दें, जस्ट गिव मी अ वायर्ड माइक, कुछ भी नहीं चल रहा, वो चल रहा है आज एकदम श्लोक के अनुसार साउंड सिस्टम चल रहा है, परिवर्तनशील। तो ये उदाहरण हम अक्सर देते हैं कि ये आंखें जिनको हम इतना महत्व देते हैं, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग भागों को हम कितना महत्व देते हैं, हमारी आंखों को, हमारे हाथों को, पैरों को, चेहरे को, पूरे शरीर को कितना महत्व देते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स को निकाल के यदि रख दिया जाए, आंखों को निकाल के यहां रख दूं मैं टेबल, तो क्या मूल्य रहेगा उसको? भयानक दिखती है फिर वो आंखें। तो वो आंखों का मूल्य है, वो आंखों की सुंदरता कैसे बनी हुई है जब वो यहां पर स्थित है? यहां पर तो छोड़ दीजिए, यदि यहां से थोड़ा साइड में भी हो जाए तो सुंदरता चली जाती है ना, ये आईबॉल थोड़ा साइड में हो जाए, इधर ये इधर हो जाए, क्या बोलते हैं चकना, तो तुरंत फिर सुंदरता चली जाती है। तो सबसे पहले आंखों को शरीर में कहां स्थित होना चाहिए उसका एक नियम है, हमारे चेहरे को कहां स्थित होना चाहिए, बालों को। अब देखिए ये बाल, इसकी तुलना बहुत बहुत इसका अच्छा उदाहरण दिया गया है कि यही बाल आप नाई के पास जाते हो, कटवाते हो, जिसके ऊपर इतना शैंपू लगाया और इतना क्रीम लगाया और इतनी बार इसको कंघी से पीछे कर करके कर करके, ये कई बार आगे करके, आजकल तो वो बंबई में देखा जाता है कांटों की तरह। तो जो भी कुछ इतना सब कुछ खर्चा कर कर जब नाई काट देता है इसको और वहां पर नीचे गिरा हुआ बाल, क्या हम उसको उठा के लाते? इतना खर्चा किया इसके ऊपर, कली लगाया था, शैंपू लगाया था, कितना महंगा इसके ऊपर, क्या उसको इकट्ठा करके अपने साथ ले आते? नहीं, वो नाई क्या रखता है उसको, सब कचरे में। तो वही बाल जिसके ऊपर इतना खर्चा करते जब तक ये सर पर वो अटका हुआ है, यहां से छूटा तो वही बाल फिर, ये कहा जाता है कि इस बाल को जब कोई स्पर्श कर ले, कटे हुए बाल को स्पर्श कर ले तो उसको नहाना पड़ता है। तो अब आप कहोगे सर पे तो 24 घंटा रहते, तो 24 घंटा पानी में रहूं मैं? वही बाल जब कट के नीचे गिर जाता है उसको स्पर्श करने से नहाना पड़ता है, और वही बाल हमारे सर पर रहता है तो हम भगवान के अर्चन विग्रह की पूजा भी उसी बालों के साथ कर सकते। तो उस बाल को वो महत्व या मूल्य कौन दे रहा है? आत्मा। तो जब तक आत्मा है अंदर तो ये शरीर नहीं, शरीर का एक एक अंग का मूल्य है, एक एक भाग का मूल्य इस शरीर का है जब तक कि आत्मा अंदर है। कोई कहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट, आई ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? जीवित व्यक्ति के अंदर है कि नहीं? जीवित व्यक्ति के अंदर कर रहे हैं। तो जीवित व्यक्ति के अंदर उस किडनी का मूल्य कब बना रहेगा? जब तक आत्मा है। किसी मृत शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट कितना भी करते जाओ, कोई मरा हुआ है उसके अंदर और 4 किडनी डाल दो, हाँ, 2 के बदले 2 एक्स्ट्रा रिजर्व, कोई फायदा नहीं। जब तक आत्मा नहीं, चाहे कितने भी आप हार्ट डालो, किडनी डालो, कोई फायदा नहीं। और आत्मा है तो एक किडनी पे भी चलता है ना, एक किडनी पे भी चलता है वो। तो इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं वो सही रूप को पहचानते हैं और सही मूल्य को पहचानते हैं। शरीर में रहते हुए सो, अर्थात न भावो विद्यते सतः, उभयोस अपि दृष्टोंतस त्वनयोस तत्व दर्शी भी, वो तत्वदर्शी है। इसलिए तत्वदर्शी की यहां पर परिभाषा दी गई है कि जो दोनों को जानता है, जीव तत्व और शरीर तत्व, इन दोनों को पहचानता है, वो है तत्वदर्शी। ये नहीं कि तत्वदर्शी केवल आत्मा को ही जानता है, शरीर के बारे में तो वो अज्ञानी है। नहीं, शरीर के बारे में भी वो ज्ञान रखता है कि शरीर का मूल्य क्या है और फिर जीव का मूल्य क्या है, अर्थात आत्मा का मूल्य क्या है। और इसे कहते हैं सांख्य योग। तो भगवान यहां पर अब ये सांख्य योग की शुरुआत किए हैं और आगे के बहुत से श्लोकों, मेरे ख्याल से 38 से 40 तक श्लोक हैं जिसमें भगवान अब इस सांख्य योग के विषय में ही अर्जुन को ठोक पीट कर, ठोक बजा कर बताने वाले हैं कि अर्जुन तुम हर दृष्टिकोण से, सांख्य के दृष्टिकोण से, तत्व दर्शन के दृष्टिकोण से, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से देखो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो, महत्व हर समय जो नित्य है, जो सत है उसी का है, और जो अनित्य है, जो असत है, उसका कोई मूल्य नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है?
Everyone, all of us, look for safe zones.
Safe zone.
Safe zones. Whether in normal life or job or anywhere. So we are always looking for something stable.
Yeah.
So is it right or wrong that one looks for stability?
Is it right or wrong that one looks for stability? क्या ये सही है हम नित्यता के इच्छुक हैं? But we have to understand first that what is stable. looking for stability is equality of the soul. Yes, we should. We should all. Even if you don't want to, you will look for stability. Because that is the nature of the soul. The soul is eternal. Eternal means it is stable. So the soul will look for stability. The examples which we took, that we look for a stable job, a stable house, you know. So it is the soul which is looking for that. We want to live stable in this body. This is the nature of the soul which is looking for. The problem is that it starts looking in material things, the stability. That is ignorance. But to look for stability, yes, that should be what the soul should be doing.
Agreed. But that comes at a later stage when you are slightly knowledgeable. But stability is taught to us right from the beginning. From
birth. Because soul is, right from the time of conception, the soul is there. And yes, you are right that after certain time, then we get the knowledge that what is, where I should look for stability.
Yeah.
But right from the beginning, forget about, there is no beginning because the soul is eternal. So always, whether you find the soul in the embryo or in the previous life or in whatever form, whether it's an ant, it's in the ant's body, or whether it is, you know, as a human being, it is looking for stability.
My question was other way around, is as youngsters, even our parents tell us to move in a particular path. Going to school, going to college, having a stable job, having a stable life. These are all thought. And half the time we don't use our own thinking process. We try to flow it as per the pattern that is going on. So that is why my question was whether it is right or wrong, or whether somebody should use his own intelligence to move in the right direction. Had we not followed that path, we would have been something different.
See, therefore the scriptures tell that what is the responsibility of a parent, what is the responsibility of, okay, you are saying that as a ignorant child,
yeah,
I follow my parents, yeah, they tell me go to school, they tell me study every day, all of that. So now the Vedic arrangement is such, whether it is your parent telling you to do something, whether it is your leader as a king telling you to do something, your teacher, whoever is superior to you, who is knowledgeable, his knowledge should be connected to Sat, to transcendental knowledge. That is the responsibility. So we see now that because the parents, the king, the leader, the teachers, they are not connected to Sat. So whatever they are telling to the dependents is also about Asat. They are telling you become stable in Asat.
Yeah.
That is because they are connected to Asat. And they are looking stability in Asat. So therefore it has to be an overall change from, you know, the king to say the parents to the teachers. The entire society has to be revamped into this transcendental knowledge. Then only we can have a very, very healthy and safe zone, as you are saying. That will be the safest zone. Any announcements?
Hare Krishna. Two announcements yahan par karna chahunga ki jo unmarried matajis hain, unke liye har baar ki tarah is baar bhi summer girls camp hai. To is camp ke dates aa gaye hain, wo 14, 15th aur 16th ko hai. और नासिक में ही ये गर्ल्स कैंप होने वाला है, या 14, 15 एंड 16 ऑफ मई. तो इसके लिए जिन माताजी को अपना नाम देना है, वो रसिक मोहिनी माताजी के पास अपना नाम दे सकते हैं. ये कैंप हर साल होता है, और विशाखा माताजी जो मुंबई से हैं, वो यहाँ पर आकर ये कैंप्स कंडक्ट करते हैं. तो जो माताजी 15 साल से 30 साल तक हो, अनमैरिड हो, वो इस कैंप के लिए सहभागी हो सकते हैं. साथ ही साथ जो जिसकी एडवर्टाइजमेंट पूरे नासिक में हो रही है, वो संभवामी युगे युगे जो नाटिका है, महानाट्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर जो होने वाला है, उसके टिकट्स भी हमारे बुक स्टॉल में आ गए हैं. तो जिन भक्तों को इस नाटिका देखना चाहते हैं, वो यहाँ से टिकट कलेक्ट कर सकते हैं. बहुत बड़ा ये महानाट्य है और जो चार सिटीज सिलेक्ट की गई उसमें से नासिक एक सिटी है जिसमें वो चौथा शो यहाँ पर हो रहा है। तो सब भक्त लोग भी सब एक साथ अगर जाना चाहें तो उस लाइन के हिसाब से हमारे पास टिकट्स अवेलेबल है, तो आप वो टिकट्स बुक स्टॉल से आज से ही खरीद सकते हैं। हरे कृष्ण।
आज का जो फीस्ट प्रसादम है वो स्पॉन्सर किया है धैर्यशीला पाटिल माताजी। अगर वो या उनके परिवार से कोई यहाँ पे अगर उपस्थित है तो मैं उन्हें कृपया करके यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद और हम इनके पूरे परिवार के लिए श्री राधा गोपीनाथ, श्री निताय गौरचंद्र और श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे तीन बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और बुक स्टॉल से एक अनाउंसमेंट है। भगवद गीता मराठी जो अभी तक पॉकेट साइज में अवेलेबल नहीं थी तो अभी बुक स्टॉल में अवेलेबल हो गई है। अगर जिन भक्तों को देखना है या खरीदना है तो कृपया करके आप बुक स्टॉल में संपर्क कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का मराठी में 5वां स्कंद अवेलेबल हुआ है जो अभी अभी, क्योंकि अभी तक श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद तक ही हमें मराठी में बुक्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी श्रीमद् भागवतम का मराठी 5वां स्कंद भी स्टॉल में अवेलेबल है, तो कृपया करके आप स्टॉल पे संपर्क कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए सभी भक्तों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, कृपया करके 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम इन सभी भक्तों के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के लिए श्री निताय गौरचंद्र और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। और जो नए भक्त हैं जो अभी खड़े थे उनमें से जो प्रभु जी हैं तो यहाँ पे श्रीमान आत्मतत्व प्रभु है, तो कृपया करके कीर्तन के बाद आके आप इन्हें मिले ताकि वो हमारे मंदिर में जो अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में जानकारी दे सके। और जो माता जी है यहाँ पे सिद्ध रुक्मिणी माता जी है तो कृपया करके आप उन्हें आके मिले। और जो नए भक्त हैं उनके लिए और एक विशेष सूचना कि जैसे आज का ये बुधवार का गीतामृत कार्यक्रम है तो उसी प्रकार हर रविवार शाम रविवार संडे फीस्ट नाम का कार्यक्रम होता है, तो आप सभी भक्तों को उसके लिए भी आमंत्रण है। हरे कृष्णा।
जय श्री निताय गौरचंद्र की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Thank you.
Hare Krishna
प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदी। महाप्रसाद गोविंदे नम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासनैव जायते शरीर विद्या जाल जोड़ेन्द्रिय ताहेका जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जी भारती लोभमय सुदूरमती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामा कोरी बार हे जी भजा स्वप्रसादन दिलो भा सेयन अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निता जय शिशिनिताय गौरचंद्र महाप्रसादम की।